ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಜಯ ಜಯ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ಯಾಮ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೌಡ್ಲಿ ಹರಿಯೋ. ಜಯ ಜಯ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ಯಾಮ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಬಲೋ ಬಲೋ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಪುಕಾರೋ. ಜಯ ಜಯ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ಯಾಮ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಜಯ ಜಯ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ಯಾಮ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಜಯ ಜಯ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ಯಾಮ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಜಯ ಜಯ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ಯಾಮ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಜಯ ಜಯ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ಯಾಮ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಪ್ಯಾರಿ ರಾಧೆ ಪ್ಯಾರೋ ಶ್ಯಾಮ, ಪ್ಯಾರೋ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಪ್ಯಾರಿ ರಾಧೆ ಪ್ಯಾರೋ ಶ್ಯಾಮ, ಪ್ಯಾರೋ ಶ್ರೀ ಬರಸಾನೋ ಧಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆಪ್ ಸಬ್ಕಿ ಆವಾಜ್ ಸುನ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಇಸ್ ಮಹಲ್ ಮೇ ರಾಧಾ ರಾಣಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹರಿಬೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ ಲೌಡ್ಲಿ ಪುಕಾರೋ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮೋ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರಿಗೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮೋ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
निथाई गौर ब्रह्मानंदे
जय जय श्री राधे
नहीं पुकार में कुछ दम नहीं है हाँ यहां से आना चाहिए यहां से नाभी से हाँ
जय जय श्री राधे
यहाँ पे आके शर्माएंगे पुकारने को तो क्यों आना है यहाँ पर हाँ यहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं शिव जी आते हैं सब देवता आते हैं केवल राधा रानी को पुकारने के लिए हाँ हमारा भी भाग्य है उनके जैसा पुकारिए
जय जय श्री राधे
हमेशा कहते हैं जब बॉम्बे में पुकारते हैं तो एसटीडी कॉल होता है यहाँ पर लोकल कॉल है इसलिए कर लीजिए ज़्यादा खर्चा नहीं है एकदम पहाड़ पर आ गए आप एकदम पास में राधा रानी के हाँ तो आप सबको बधाई हो हम श्री जी महारानी के पहाड़ पर आ गए हैं ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जिस मंदिर में हम गए थे सबसे पहले वो श्री जी का मंदिर है श्री जी महारानी का मंदिर नारद मुनि के अवतार हुए हैं नारायण भट्ट गोस्वामी नाम के वो कुछ 400 साल पहले का उनका जन्म है जब भी चैतन्य महाप्रभु भी लीला कर रहे थे षड गोस्वामी भी वृंदावन में लीला कर रहे थे तो नारायण भट्ट गोस्वामी ऊंचे गाँव में रहा करते थे ऊंचा गाँव यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर है जो राधा रानी की सखी है ललिता देवी उसका जन्म और उसका गांव वहां पर है तो नारायण भट्ट गोस्वामी जी को जिस मंदिर में हम पहले गए थे उसमें आप जब पहले आते हैं तो आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ता है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति है ना देखा ना आपने मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वहां पर लाउडस्पीकर चल रहा था तो वहां पर फिर कथा करके मुझे वहां दिखाने का प्लान था लेकिन बहुत लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके नीचे एक थोड़ी सी शिला है यहाँ पर श्री जी महारानी के चरण चिन्ह हैं और वहीं पर नारायण भट्ट गोस्वामी को श्री जी का मूर्ति प्राप्त हुआ था श्री जी महारानी स्वप्न में आती है नारायण भट्ट गोस्वामी के तो संत होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं सिद्ध संत होते हैं उनके स्वप्न में प्रत्यक्ष रूप में उनको राधा रानी कृष्ण भगवान दर्शन देते हैं उनसे संवाद करते हैं तो स्वप्न में उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से इस पहाड़ के अंदर हूँ मुझे आप निकालो और मुझे स्थापन करो तो वो जो शिला वहाँ पर है उस पर उसके उनके चरण चिन्ह भी हैं और उसी के नीचे श्री जी का विग्रह प्राप्त हुआ था और फिर नारायण भट्ट गोस्वामी ने उसको मंदिर में प्रस्थापित किया साथ साथ में उनके ललिता और विशाखा जो उनकी सखियाँ हैं परम सखियाँ वो भी उनको प्राप्त हुई थी और राधा रानी कृष्ण भगवान ललिता विशाखा को वहाँ पर स्थापन किया गया इसके बाद थोड़ी आपको मैं बैकग्राउंड बताऊँगा बरसाना धाम का भगवान को सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी बहुत प्रिय है क्योंकि पृथ्वी के माध्यम से जीव जो है वो भगवान को प्राप्त हो सकता है स्वर्ग माध्यम से कोई रास्ता नहीं है भगवान के धाम के लिए हाँ अगर आपको परदेश जाना है तो आपको बंबई के सांताक्रूज एयरपोर्ट जाना पड़ेगा आप दादर से नहीं जा सकते आपको एक जगह आना पड़ेगा सेंट्रल लोकेशन है वहीं से वहाँ का फ्लाइट निकलता है अगर इस बिल्डिंग के आप दूसरे माले पर जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर में आने का रास्ता किधर है नीचे आना पड़ेगा आपको यहीं से बाहर जा सकते हैं आप वहाँ से कूद सकते हैं आपकी इच्छा हो तो लेकिन वो जायज़ मार्ग नहीं है बिल्डिंग से बाहर निकलना है आपको तो फिर आपको पहले ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। तो ग्राउंड फ्लोर तो इंपॉर्टेंट होता है, अगर बेसमेंट भी हो तो ग्राउंड फ्लोर का इंपॉर्टेंस है, सेकंड फ्लोर हो, 10 मंजिल हो, 101 मंजिल भी हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे आके बाहर गिरना है। तो वैसे ग्राउंड फ्लोर है पृथ्वी लोक, जहां से भगवान के धाम का रास्ता निकलता है, इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय है वो। पूरे पृथ्वी लोक में भगवान को भारतवर्ष बहुत प्रिय है, क्योंकि भारतवर्ष में उन्होंने स्वयं कई अवतार लिए हैं और कई संत लोग वहां पर प्रकट हुए हैं, कई भगवान के भक्त लोग प्रकट हुए हैं, उनके चरण धूलि यहाँ पर लगी हुई है। और ये संतों की भूमि कहा गया है, यहाँ पर उपदेश की भूमि कहा गया है, वेदों की भूमि कहा गया है, सारे दुनिया के लोग यहाँ पर आकर वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति का, योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा मुक्ति का मार्ग जो है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूर्व की ओर देखते हैं, जब भी आध्यात्मिक विषय होता है तो सबका ध्यान पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर नहीं है। भोग का विचार करना है सबका ध्यान पश्चिम की ओर है, कैसे अधिक से अधिक अच्छी तरह से भोग करना है पश्चिम की ओर देखते हैं, जब भगवान को देखना है तो पूर्व की ओर देखते हैं। तो ये भारत देश पूर्व में है और भारत देश में उनको सबसे ब्रजमंडल बहुत प्रिय है, जो उन्होंने अपने जन्म के लिए चुना। उन्होंने अपना अवतार जो है परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान जो है वो मथुरा में जन्म लेते हैं, उसको कहते हैं ब्रजमंडल। ब्रज का अर्थ वो है जहां पर भगवान की गाय बड़े निर्भय होकर विहार करती है, उस देश को ब्रज कहते हैं। अभी तो कोई ब्रज रहा ही नहीं, सब जगह गायें भयभीत हैं, कब काटी जाएंगी पता नहीं। लेकिन ब्रज की व्याख्या वो है जिस रज में गाय जो है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रेम से विहार करती है, थन भर भर के दूध देती है, क्योंकि आनंदी है, इसलिए उस देश को ब्रजमंडल कहते हैं। और वो ब्रजमंडल जो है वो चिरंतन धाम है भगवान का, वो अनंत शेष जी के 1000 फन पर, जो बीच का एक फन है इसका नाम है कुमुद, कुमुद नाम का फन है, द हुड ऑफ अनंत शेष, 1000 हुड्स ही हैज गॉट। उस कुमुद नाम के फन पर ब्रजमंडल विराजमान है और सृष्टि के विनाश काल में इसका विनाश नहीं होता है। जब मिनी प्रलय होता है एक कल्प के बाद और महाप्रलय होता है ब्रह्मा जी के जीवन समाप्त होने के पश्चात, तभी भी ब्रजभूमि, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम, अयोध्या धाम नष्ट नहीं होता है। ये समय के प्रभाव के परे हैं, त्रिगुणातीत है, दिव्य है। तो ये जो धाम ब्रजमंडल है वो भगवान का जो गौलोक धाम है, दिव्य धाम जहाँ भगवान चिरंतन निवास करते हैं, उसका एक अंश है। जैसे हम लोग अभी सब लोग बम्बई से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई और कहाँ से, कोई यूके से आए हैं, कोई अपना घर लेके आएगा यहाँ पर, कोई अपना घर उठा के लेके आए साथ में ताकि अपने घर में रहेंगे, यहाँ पर घर को इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पर, नहीं अपना घर हमको छोड़ के आना पड़ता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान दिव्य है, भगवान अपने घर को भी यहाँ लेके आते हैं और घर को प्रकट करते हैं यहाँ पर, फिर उसमें अवतार लेते हैं। तो राधा रानी ने भी कहा था कि मैं नहीं जाऊँगी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए, समय हो गया है, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी जब तक श्री वृंदावन धाम, गौलोक वृंदावन धाम, श्रीलोक वृंदावन धाम, जमुना देवी, गिरिराज, गोवर्धन जब तक नहीं होंगे तब तक मुझे वहां आने में कोई रुचि नहीं है। तो भगवान कहते हे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन की बात क्या है, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हें पूछने के पहले से ही श्री वृंदावन धाम को पृथ्वी तल पर अवतरित कर दिया है, तो अभी मैं आने को तैयार हूं। तो ये तीन प्रमुख चीजें हैं, वृंदावन, गोवर्धन और जमुना जी, ये भगवान को अति प्रिय है, वहां पर भगवान का निवास है। तो ये जो भगवान का गौलोक वृंदावन है वहां का जो अंश है वो यहाँ प्रकट होता है और उसमें भी कई भाग हैं, करीब करीब सैकड़ों लाखों वन हैं इसके अंदर, लेकिन उसमें से 108 वन भगवान को बड़े प्रिय हैं, 108 वन में से उनको 12 वन अति प्रिय हैं, वो 12 में से भी उनको 5 वन अति प्रिय हैं। और नंबर 2 का प्रिय वन कामे वन है जहाँ पर हम कल गए थे, और नंबर 1 का प्रिय वन वृंदावन है, सबसे प्रिय। यहाँ पर भगवान ने रास रचाया है, जमुना किनारे खेल खिला है, गौचारण किया है, आनंद लिया है, दिव्य आनंद। और इसकी विशेषता क्या है कि इस धाम में, ब्रजमंडल धाम में भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं नियंता हूँ, निर्माता हूँ, इस सारी भावना को वो त्याग देते हैं और एक सामान्य व्यक्ति बनकर, उनको रास्ता दी जाने के लिए प्लीज, सामान्य व्यक्ति बनकर इस ब्रज में रहते हैं। उसमें कोई उनका पोजीशन दिखा देने के मैं नियंता हूँ, मैं निर्माण करता हूँ, पालन करता हूँ, नष्ट करता भी मैं ही हूँ और मैं ही सबका स्रोत हूँ, ये सब जो गीता में वर्णन करते हैं अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, वो सब बातें यहाँ पर नहीं करते वो, क्योंकि ये उनका घर है। वो घर जा, घर में कोई अपनी ऑफिशियल पोजीशन को प्रकट नहीं करता है, वो तो घर में पिता माता बेटा के रूप में आराम से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हाँ, कोई टाई वाई पहन के घर में बैठते नहीं, घर में तो आराम से रहते, एकदम फ्री रहते हैं, दिल से भी मन से भी सब शांत रहते एकदम, तो ये भगवान का घर है। यहाँ पर वो अपने सखियों से, अपनी माता से, पिता से, अपने दोस्तों से, मोरों से और तोतों से सब रिश्ता बनाने के लिए, और रिश्ता बनाने के लिए और उसको अमल करने के लिए आते हैं। ही कम्स टू एक्सपीरियंस द डिवाइन मेलो ऑफ लव ऑफ वेरियस काइंड्स। तो उसमें भी श्री बरसाना धाम, जिसे मैंने कहा वृंदावन उनको अति प्रिय है, तो जो पौराणिक वृंदावन का वर्णन है, आज का वृंदावन तो एक जगह पर है, उसका जो मुकाम पोस्ट जो है, पिन कोड वगैरह, वो अभी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो पौराणिक वर्णन के हिसाब से वृंदावन है, उस वृंदावन के अंदर गोवर्धन भी है, जमुना जी भी है, नंदगांव, बरसाना और जावट, ये सब इंक्लूडेड है, 20 कोस की एरिया ही। तो नंदगांव बरसाना भी उसी के अंदर है, लेकिन उसी के अंदर होने पर भी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वृंदावन धाम में भगवान मालिक हैं, वृंदा देवी को उन्होंने अपना वन जो है वो भेंट में दिया है, वृंदा देवी उसका लालन पालन करती है, और सब दुनिया जो है वो वृंदावन धाम में भगवान के चरणों की रज लेने के लिए लालायित रहती है। जितने भी देवता हैं, जितने भक्त हैं, जितने संत हैं, सब लोग भगवान के चरण की धूल चाहते हैं, क्योंकि यहां पर भगवान जूता नहीं पहनते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, कहीं भी ऐसा विश्व में स्थान नहीं जहां भगवान स्वयं बिना चप्पल पहने घूमते होंगे, लेकिन यहां पर वो सारा ऐश्वर्य जो है ना, जो भी ऐश्वर्य होता है वस्त्रों के रूप में, अलंकार के रूप में, मुकुट के रूप में, पोजीशन के रूप में, रथ के रूप में, जो भी ऐश्वर्य होता है सब त्याग देते हैं वो, यहां तक कि चप्पल भी त्याग देते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। इसलिए इस रज के अंदर भगवान के चरण का स्पर्श है। हाँ, सब लोग देखो ऐसे एक चौकोन सब छोड़ के बैठे हैं, अरे धूल है यहाँ पर ऐसा लगता है, लेकिन वो धूल नहीं है बंबई जैसी, यहाँ पर ये धूल जो है ये राधा रानी, कृष्ण भगवान, सखा सखी सबके चरणों के पुनीत हो गई धूल है ये, इसके स्पर्श से ही जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पर केवल पाप नष्ट नहीं होते हैं, प्रेमा भक्ति का हृदय में उदय होता है। हाँ, इसलिए जिसकी इसकी इच्छा है उठ को यहाँ बैठ सकते हैं, जिसकी इच्छा हो कोई फोर्स नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ऐसा है ना कि ये कई जन्मों के बाद मिला हुआ ऐसा एक क्षणिक लाभ है, ये एक क्षणिक लाभ के अंदर जन्म जन्मांतर का बेड़ा टूट सकता है, थोड़ा संकोच छोड़ देंगे तो फिर सब कुछ प्राप्ति हो सकती है ना। कभी कभी हम लोग इतनी दूर आते हैं लेकिन फिर भी नहीं, थोड़ा सा पानी बहुत ठंडा है, नहीं स्नान कर सकते, मेरे को सर्दी हो रही है ऐसा लगता है, लेकिन न जाने और कितने साल के बाद में आ पाएंगे। हाँ, कूद जाने का उसके अंदर, सीधे सोचने का नहीं, क्या है उसके अंदर, भगवान की कृपा हो रही है, ले लो उसको, हाँ लूट लो उसको। हम लोग बहुत शहर के लोग जो होते हैं ना, बहुत गणित करते रहते हैं, कैलकुलेशंस, अभी मैंने एंटीबायोटिक लिया है उसके 4 दिन हो गए हैं, अभी थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, अभी मैं नहीं करूँगा, अभी ये ऐसे वैसे बहुत सोचते रहते हैं हम लोग, बहुत कैलकुलेशन करते रहते हैं अपने को केंद्र स्थान में रखते हुए। लेकिन धाम में जब आते हैं ना, तो भगवान के विषय में जो भी अनुकूल है वो सबको तुरंत ग्रहण करना चाहिए बिना संकोच के। एक कंजूसी होती है देने की, जो अक्सर सब लोग देने में कंजूस होते हैं, सोचते नहीं 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 5 ही रुपये दूंगा, 10 नहीं दूंगा, 11 नहीं दूंगा, ऐसे सोचते रहते हैं। डोनेशन के लिए कोई आते हैं जन्माष्टमी के लिए, नहीं नहीं 101 ही दूंगा, 501 नहीं दूंगा, कैसे होगा, फिर यहाँ पर भी देना है, वहाँ पर देना है, बहुत सोचते रहते हैं। तो देने की कंजूसी तो सब जब जग जाहिर है, सबको मालूम है, लेकिन हम लोग लेने में भी कंजूस हैं। जब भगवान कृपा को लुटाते हैं तो हमारा जो अंजुली है वो छोटी सी एकदम, खोलने को भी तैयार नहीं हम, हाँ ऐसे रहते हैं हम। दिल खोल के लेना चाहिए, जब भगवान कृपा लुटाते हैं तो खोल खोल के लेना चाहिए बिना संकोच के, तब जाकर धाम का लाभ जो है पूरी तरह से हो सकता है। तो ऐसे कहते हैं ये रज जो है इसका एक एक कण जो है वो आप वैकुंठ धाम जो है ना, वैकुंठ धाम में भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। एक आम वैकुंठ है जो ब्रह्म ज्योति में विराजमान है, लेकिन उसके आगे अयोध्या ब्रह्म वैकुंठ है, उसके आगे मथुरा वैकुंठ है, उसके आगे द्वारका वैकुंठ है, द्वारका अयोध्या और मथुरा ऐसे ग्रेड से उनके, और उसके आगे गौरलोक वृंदावन है जो भगवान का निज धाम है। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान के अयोध्या द्वारका और मथुरा वैकुंठ जो है उसका सारा धन भी आप इकट्ठा करेंगे तो यहाँ की एक रज का कण खरीद नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति है उसके अंदर, लौकिक रूप से नहीं, रुपये और डॉलर के रूप में नहीं, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, जो लाभ और शक्ति आप ये रज के कण दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर राधा राम कृष्ण के चरण चिन्ह जो हैं वो विराजमान हैं, उनके स्पर्श से वो पुनीत हो गए। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, शिव जी, देवताएं, देवियां सब लालायित रहती है इसको प्राप्त करने के लिए, इनको प्राप्त नहीं होता है, हम लोग बड़े आराम से बैठे हैं इस रज में। हाँ, तो ये इसकी महिमा है। तो घर में जैसे अलग अलग जगह होती है, कोई हॉल होता है, कोई ड्राइंग रूम होता है, कोई किचन होता है, बेडरूम होता है, और सब लोग सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, आपके जो मित्र होते हैं वो अंदर तक आ जाते हैं, जो प्राइवेट एकदम बहुत रिश्ते वाले प्रेम वाले लोग हैं उनको आप अंदर अंदर तक लेके जा सकते हैं। वैसे ये भगवान का वृंदावन धाम का भी ये बहुत अंतरंग हिस्सा है, बुरसानंद गांव इतना अंतरंग हिस्सा है कि यहाँ पर भगवान ने कोई राक्षस को भी नहीं मारा है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि इनके प्रेम लीलाओं में कोई बाधा आ जाए। अगर राक्षस का मारने का समझो कोई प्रसंग आता है तो फिर वो वीरता का आ जाती है ना एकदम, प्रेम कहाँ रहता है उसके अंदर, प्रेम बाजू हो जाता है, फिर क्रोध और वीरता हो जाती है, उसमें राक्षस का वध होता है। हमारे घर में वो हम प्रेम से बात कर रहे हैं पत्नी से और बच्चे से, कोई परोसे आकर झगड़ा करता है तो तुरंत भाव बदलता कि नहीं, तुरंत हम जाके अरे क्या हो रहा है देखते हैं, भाव बदले हो जाता ना, तो भाव बदले होने से प्रेम में बाधा आती है। तो इसलिए भगवान ने सब राक्षसों को यहाँ से दूर रखा है, कोई राक्षसों को प्रवेश भी नहीं दिया है। छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, बहुत आनंद आएगा आपको, कैसे इस छोटे से इलाके को भगवान ने सभी प्रकार के दिव्य वस्तुओं से भी अलग कर दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने अंतरंग प्रेम संबंधों को पूरे खुले दिल से प्रकट करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए भगवान यहाँ राक्षसों को दूर रखते हैं। तो जब भी भगवान का जन्म हुआ तो गोकुल में थे, वहाँ पर कंस ने बहुत आतंक किया, राक्षसों को भेजा, कभी पुतना को भेजा, कभी शक्टासुर को भेजा, कभी द्रोणावर्त को भेजा, कभी और किसी को भेजा, बहुत आतंक हो गया। तो परेशान हो गए नंद बाबा, डिस्कस किया उन्होंने कि अभी चलो यहाँ से दूर जाना चाहिए तो राक्षसों का आतंक बचेगा। फिर गोकुल से वो वापस अपने पुराने घर में नंदगांव में आए, ये उनका निजी घर है, ये जो यहाँ का एरिया है बरसाना एरिया है, राधा रानी के पिताजी का एरिया है वृषभानु महाराज का। और 7 किलोमीटर दूर जाएंगे तो यहाँ से नंदगांव है, नंद बाबा का वहाँ पर महल है, राज्य है सब। तो वो फिर लौट के आते हैं, वृषभानु महाराज राधा रानी को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, नंद महाराज कृष्ण बलराम को लेकर नंद महाराज नंदगांव में जाते हैं। तो वो राक्षस को भेजते हैं गोकुल में मारने के लिए, लेकिन उनको कोई मिलता नहीं वहाँ पर। तो वो लौट के आते हैं, बोलते कोई है नहीं यहाँ पर, अभी कोई ऐसा बालक है ही नहीं नीले रंग का मोर पंख धारण किया हुआ, किसको मारे हम। तो कंस बोलते अरे ऐसे कैसे हो गया, पहले तो था वहाँ पर। तो फिर वो अपने 2 आदमियों को भेजता है, हाउ बुलाओ उसका नाम है, इसका नाम ऐसे पड़ा आपको पता चलेगा आगे कथा में। इसमें एक पिताजी और एक लड़का है, दोनों कंस के सैनिक हैं। वो आते हैं कृष्ण बलराम को ढूंढते ढूंढते और देखते हैं कि खेल रहे हैं अच्छी तरह से बालक के रूप में, और उनको पकड़ हो जाते हैं। और जब छूते हैं, जैसे ही छूते हैं तो वो पत्थर बन जाते हैं, बहुत भयंकर शरीर था उनका, तो भयंकर ऐसे आकार के पत्थर वाले ऐसे बन गए वो। तो उसका इस्तेमाल बाद में यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बलराम को डराने के लिए किया, जब खेलते हैं मानते नहीं कुछ बात, खाने को समय पर नहीं आते हैं, कुछ शरारत करते हैं, कोई माखन चोरी करते हैं, हाउ बुला आ जाएंगे, हाउ आ जाएगा, तुरंत भाग जाते हैं। उसके बाद अपने 2 आदमी लौट के नहीं आए, तो फिर कंस और परेशान हो गए, अरे क्या चल रहा है क्या, मैं खुद जाके देखता हूँ, कोई बड़े रुबाब से आते हैं। अभी कंस जो है ना, हम सब लोग कंस को जान समझते हैं विलन है बड़ा, है ना, हमारे पूरा कृष्णा का ड्रामा जो है उसके अंदर कंस नंबर 1 का विलन है। लेकिन कंस का भी इतिहास है, गर्ग संहिता में दिया, इतना पराक्रमी था वो, उसने दुनिया भर के जितने भयंकर भयंकर राक्षस थे सबको अपने वश में कर रखा था। गर्ग संहिता में पूरा आगे आधा तो बुक गर्ग संहिता में कंस का गौरव है, सोचोगे कृष्ण लीला है कि कंस लीला है। लेकिन जिस भगवान ने कंस का वध किया है, अगर भगवान उस भगवान की शक्ति और महिमा को समझना है, तो जिसको उसने उन्होंने मारा है उसका पहला शक्ति समझो आप। हाँ अरे मैं जाके चूहों के मारूंगा तो कोटा बड़े गौरव करेंगे आप, लेकिन मैं ब्लैक बेल्ट 10 डिग्री ब्लैक बेल्ट को मैंने परास्त कर दिया तो कुछ बोलेंगे, अरे भाई किसी को मारा है। हाँ तो चूहे को मारने से प्रसिद्धि नहीं होती है, तो भगवान का गौरव करने ही पहले कंस का गौरव होता है कि कैसे कैसे राक्षस को उन्होंने मारा, या तो मार दिया या तो वश में कर दिया। तृणावर्त है उसका वर्णन आता है कि वो लोग आकाश में उड़ते थे, आकाश में युद्ध करते थे, अस्त्र चलाते थे, शस्त्र चलाते थे, अदृश्य होते थे, आकाश में क्या क्या उत्पन्न करते थे, ऐसे भयंकर राक्षस थे वो सब लोग। उससे भी बढ़िया राक्षस कंस था, सबको वश करके अपना मांडलिक बना दिया उसने, सब उसके ऐसे मतलब कहते हैं ना सब्जुगेटेड सबऑर्डिनेट बना दिया उन्होंने, और एक करके भेजना आरम्भ किया, तुम जाओ अपनी बहन को भेजा, जाओ मार के आओ उसको, फिर खुद मर गई, फिर शक्टासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अगासुर को भेजा, सबको भेजा उन्होंने, लेकिन वो मिले नहीं बाद में थोड़ी देर के बाद। तो वो खुद आए, जिन्होंने उनका नाम और भी कहा गया था कि चक्रवर्ती सम्राट है वो, चक्रवर्ती मतलब चक्र, जो सब जगह आर्यावर्त में उनका अधिष्ठान है, प्रभावशाली है। वो व्यक्ति जैसे ही बरसाना नंदगांव क्षेत्र में प्रवेश करता है, आते ही तुरंत स्त्री बन जाता है, इमीडिएटली बिकम्स अ लेडी। आप सोच सकते हैं, राजा महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट कंस महाराज, कन्या बन गए लेडी। हाँ, क्या अवस्था होगी उसकी उस समय होगी होगी। समझो आप अभी हम बैठे यहां पर, आप बैठे, चल हम कन्या बन जाएंगे तो क्या होगा हमारा, कैसे लगेगा हमारे, ये क्या हो गया। मराठी में बोलते ना कि सह नहीं होते, सांगता ही इतना बोल भी सकते नहीं कि इसको क्या हो रहा है उसको। ऐसे भयंकर संकुचित अवस्था हो गई उसकी, बहुत संकोच में आ गए, इतने दुखी हो गए, अरे मेरा क्या अवस्था हो गई, कैसे बताऊं, किसको मुंह दिखाऊं, क्या करूं। सब गोपियां जो है ताली ताली पीट के हंसते हैं उनको, अच्छा हो गया कंस महाराज, बड़े चोर बनते हो, हाँ बड़े लोगों को, कंस को सबको कष्ट देते हो, अच्छा हुआ तुम्हारा। नहीं नहीं रोते हैं, बहुत बहुत रोते हैं, नहीं नहीं किसी को बताना नहीं, मेरे कुछ कृपा करना, कुछ मेरा उपाय करना, मतलब कुछ नहीं, पहले गोबर के कंडे बनाओ। तो नए वे राजा महाराज धीराज कंस मथुराधीश, नहीं नहीं बनाओ बनाओ, गाय ने गोबर डाला उसको इकट्ठा करो, तो बनाओ कंडे, पेड़ पे सुखाओ उसको। रोते रोते वो क्या करें, सखियां सब तालियां पीट के हंस रही है। 6 महीने तक गोपियों ने कंडे लिपवाए इनसे यहाँ पर, फिर रोते रोते रहे, फिर बहुत गिड़गिड़ाए, बोला अभी कृपा करो कम से कम। फिर राजा रानी को उनको मुलाकात करते हैं, बोले महारानी को मिलाएंगे तो महारानी कुछ करेंगे। तो कंस को लेके वो ऐसे कैदी की तरह ऐसे होते ना, वैसे सर झुकाए हुए एकदम परेशान दुखी खाना पीना इसको अच्छा लगने रहा है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई दुखी दुखी है, उसको लेके आके महारानी के सामने प्रस्तुत करते हैं। महारानी बहुत डांटती है उनको, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारे यहाँ आने की। तो बहुत माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज माफ करना, फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मेरा कुंड है किशोरी कुंड, इसमें आप कूदो, स्नान करो, दोबारा पुरुष बन जाओगे, और अगर वहां पर वापस लौट के आए अनंत काल तक तुम्हें स्त्री बना दूंगी। वार्निंग देती है, नेवर कम अगेन हियर, परमानेंटली बिकम वुमन। तो कंस जो है झट से उसमें कूदता है, बोले ना कि पड़े पढ़ते हुए फल के आगे, ऐसे मराठी में कहा है, पढ़ते पढ़ाची आज्ञा, बिफोर शी चेंजेस हर माइंड यू नो आई शुड जंप। अभी उसने बोल दिया है तो तुरंत वो तुरंत उसी वस्त्र के साथ में कूदता है पानी में, तुरंत पुरुष बनता है, और वैसे ही जो भागता है मथुरा तक यहां से, कि कहीं मन न बदली हो जाए उनका, इसलिए मथुरा तक भागता है, पीछे मुड़के भी दिखता नहीं। इसलिए राधा रानी को महाप्रतापी कहा गया है। हाँ, सुंदर कथा है जुड़ी ऐसे, जब भगवान ने गिरिराज को उठाया, तो मैं कोई संक्षेप बता रहा हूँ, भगवान ने गिरिराज को उठाया तो सब लोग एकदम खुश हो गए ना, अरे हमारा बालक कितना अद्भुत है, देखो इतना छोटा सा बालक है, एक उंगली पर 7 दिन 7 रात तक इतना भयंकर पहाड़ उठाकर खड़ा रहा, इतनी बड़ी आतंक से हमको बचाया। सब लोग बैठ के ऐसे सहम में बैठे हैं, चर्चा कर रहे थे, कितना बढ़िया है कृष्ण, सब नंद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र जन्मा है, कैसे अद्भुत लीला करता है, क्या ये देवता है, क्या ये कोई संत है, कोई सिद्ध बाबा है, कौन है, कौन है ये। बोले शक्टासुर को मारा, इतना सा था तो 12 मील के राक्षसी थी पुतना, उसको मार डाला। हाँ, राक्षस बैलगाड़ी बनकर आया, उसको तोड़ डाला, हवा में उठा के लेके गया तुलावर्त, उसको वहां से उसको पटक दिया जमीन पे उसने, बकासुर की सोच को तोड़ दिया। हाँ, अगासुर के अंदर जाके उसको फाड़ दिया पूरा उन्होंने, केशी के मुंह में हाथ डालकर उसको तोड़ दिया। कैसा बालक है तुम्हारा ये, बहुत भाग्यवान, जरूर कोई देवता हो सकता है। नंद महाराज हंसने लगते हैं, हाँ, क्योंकि ऐश्वर्य का वर्णन होना है ना, ऐश्वर्य का, लेकिन ऐश्वर्य का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है, यहाँ माधुर्य का स्थान है, प्रेम का स्थान है। लेकिन ऐसा देवता है, देवता कभी चोरी करता है क्या, हमारा बालक तो सब जगह जाके चोरी करता है, वो झूठ भी बोलता है, देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी आकाशवाणी करते हैं सच होती है हमेशा, ये चोरी तो करता ही है पर झूठ भी बोलता है। अरे क्या देवता बोल रहे, वो देवता लोग इतने शूरवीर होते हैं, उनकी तरफ से बिजली चमकती है और बरसात होती है और क्या क्या होता है, भयंकर कार्य उनकी तरफ से होता है, और ये हमारा देवता बालक जो है वो बादल जब गड़गड़ाते हैं तो भाग के माँ के गोद में भागता है, ये क्या देवता हो सकता है ये। और आगे सुनो, कई सब लोग बता रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, और यशोदा मैया और भगवान नंद महाराज बता रहे हैं, जब हम उनको डांटते हैं तो फिर भी जाके मक्खन चोरी करता है, और जब मक्खन चोरी नहीं मिलती है उसको मक्खन की चोरी करने के लिए, तो उस घर में जाके पेशाब करके आता है और कभी और नहीं मिलता है, ढूंढते कहीं सब लंबा लंबा लटका के रखा है, तो फिर जो बालक सोए हैं पलने में उनके कान में पानी डाल के आता है, ये देवता कैसे हो सकता है। और ये जब सुन रहे हैं आप लोग हंस रहे हैं, वो भी ठहाका मार के हंसने लगे सब लोग, और इतने हंसे कि बैठे हुए जगह से जमीन पर गिर गए, वहां पर ऐसे गोल गोल होके पेट पकड़ के हंस रहे सब लोग। मतलब भगवान की बातें जो है वो भगवान के रूप में उनको समझना नहीं है, तो बालक है अपना, कैसे भगवान हो सकता है, सब भूल गए क्या बोल रहे थे वो। तो बीच में नंद महाराज बोलते हैं, हाँ ये गर्ग महाराज ने बताया था हमको, गर्ग मुनि आए थे, उसको वसुदेव ने भेजा था कंस के भय से, एकदम गुप्त में भेजा था कि इनका नामकरण करके आओ, क्योंकि पता था ना कि मेरे बालक हैं वो नंद महाराज के पास में है। तो गर्ग मुनि ने गौशाला के अंदर उनका नामकरण किया था, एकदम प्राइवेट, किसी को नहीं बुलाया था, सब उनके मित्र हैं नंदगांव में, लेकिन किसी ग्वाल बाल को उन्होंने बुलाया नहीं था, क्योंकि बात फैल ना जाए और कंस तक ना पहुंच जाए, ताकि कंस सतर्क हो जाए कि भाई यहां पर है, तो फिर वो और कोई राक्षस को भेजेगा, वो तो भगवान को भगवान नहीं समझता ना, तो बालक है उनके लिए, डर रहे हैं कि कंस के भय से एकदम बालक को मार डालेंगे वो। तो नंद महाराज बोलते हैं, हाँ गर्ग मुनि ने ऐसे ही कहा था कि ये बालक बहुत अद्भुत होगा और ये गिरिराज को उठाएगा, और ये सब उन्होंने पहले ही बताया था उनके भविष्यवाणी में, जब होता है ना जात कर्म संस्कार होता है, उसमें कुंडली बनती है, सब लोग स्नान मान करके आते हैं, ज्योतिषी कुंडली बनाते हैं और पूरा जीवन सुनाते हैं कि बालक क्या क्या करेगा। तो जब ये सुनते हैं कि अरे आपको मालूम था ये सब कुछ पहले से, ये गिरिराज जी उठाएंगे, हमको नहीं बताया आपने कभी, और नामकरण किया आपने, हमको नहीं इन्वाइट किया उसके अंदर, बड़े मित्र बनते हो हमारे, बड़े गुस्सा करते हो, अचानक हंसते हुए असेंबली का रूपांतर क्रोध में होता है, नंद महाराज को जाति से बाहर कर दो, हद पार कर दो इनको, ये सब बड़ी बड़ी बातें मित्रता की करते हैं लेकिन बच्चे के नामकरण को हमको नहीं बुलाते। तो सबसे उठ जाते हैं ऐसे, एक ग्रुप उठ जाता है इनको हद पार करने के लिए, जाति से बाहर करने के लिए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ग्वाल बल होते हैं, बोलते नहीं, विश्वभानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी हैं, बोलते नहीं 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 ऐसा नहीं, देखो स्थिति ऐसी थी उस समय भी, बहुत गंभीर था थी, इसलिए प्राइवेटली काम किया गया, क्योंकि भगवान को धोखा था, मतलब कन्हैया जी को बहुत धोखा था उसमें, जान का खतरा था, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे गर्ग मुनि के आदेश से ही ऐसा किया गया था, तो आप क्रोध मत कीजिए ऐसे। तो वो उन पर भी बिगड़ पड़े, विश्वभानु जी तुम उसका पक्ष लेते हो, इनको भी हद पार कर दो, क्योंकि जो क्रोध ऐसा होता है ना, क्रोध में सब मति भ्रष्ट हो जाती है, अच्छी बुरी के कुछ ख्याल नहीं रहता उस समय। तो विश्वभानु उनका पक्ष लेते, इसलिए विश्वभानु को भी बोलते हैं तुमको भी निकाल देंगे। तब बाकी सब लोग बोलते हैं, अरे इनके बारे में मत कहना, इनकी कन्या महाप्रतापी है, और उस समय ये कथा सुनाते हैं कंस की, इनका प्रताप जो है, जिस कंस के डर के मारे तुम लोग यहां तक भाग के आए हो गोकुल से, वो कंस जो है इनके क्षेत्र में आते ही कन्या बन जाता है, और इनकी कृपा से ही पुरुष शरीर प्राप्त करके वापस लौट के भाग के गया हुआ है, ये महाप्रतापी है, इनको आप कुछ बोलना नहीं है। तो फिर सब शांत हो जाते हैं। तो ये कथा जो है उस सभा में कही जाती है, विश्वभानु महाराज के महाप्रतापी कन्या के प्रभाव का जो लीला है वहां बताया जाता है, जो मैंने आपको बताया। क्या तात्पर्य था उसका, कि ये जगह इतनी महीन और पवित्र है कि यहाँ पर उन्होंने राक्षस में राक्षस को बुलाकर कोई क्या कहते हैं उसको रस भेद या ऐसा कुछ नहीं किया, रस भंग नहीं किया है। और विशेषता इस जगह की क्या है कि इस जगह पर सब जगह पर भगवान के चरणों की रज सब प्राप्त करते हैं, वो भगवान जिनके चरणों की रज सब लोग चाहते हैं, वो भगवान स्वयं यहां पर आकर राधा रानी के चरणों की रज की अपेक्षा करते हैं, यहां पर आके लोटपोट होते हैं वो, ही रोल्स इन द डस्ट ओवर हियर, राधा रानी को अपनी स्वामिनी मानते हैं, जो प्रेम करता है ना उसके ही वश में सब रहते हैं। हाँ पति सोचता है कि मैं पत्नी पर मैं मतलब मैं कंट्रोल हूं, लेकिन प्रेम से पत्नी अपने पति को कंट्रोल कर लेती है, जो भी मन की इच्छा है वो पूरी कर लेती है। हाँ ऊपर से लगता है कि ये साहब हैं और उनकी पत्नी है, लेकिन सारा जो चाबी है उनके हाथ में है। वैसे शक्ति जो होती है वो शक्तिमान का शक्ति का रहस्य होता है, और शक्ति से ही शक्तिमान प्राप्त किए जाते हैं, जैसे हम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण से बोलते हैं, नारायण लक्ष्मी राम सीता ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना, कृष्ण राधा नहीं बोलते हैं, राधा कृष्ण पहले राधा का नाम आता है, पहले लक्ष्मी का नाम आता है, पहले सीता का नाम आता है। हाँ तो जो शक्ति होती है उसी के द्वारा शक्तिमान तक हम पहुंच सकते हैं, शक्ति का जो महत्व है बहुत जरूरी है। इस तरह से भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। तो जो तटस्थ शक्ति है वो हम सब जीव हैं, हम सब जीव का वर्गीकरण जो है वो तटस्थ शक्ति में किया गया है, मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि हम लोग बीच में हैं, हम चाहे तो इस पार जा सकते हैं उस पार जा सकते हैं हमारी मर्जी से। और बहिरंगा शक्ति क्या है, वो माया देवी है, उसका स्वरूप दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी माया शक्ति का क्या कहते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन है, मूर्तिमंत उसका प्रकट्य है। दुर्गा देवी के अंदर भी तीन शक्तियां हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिससे वो जीव को बांध देती है। जो भगवान को छोड़ देते हैं उन जीव को माया देवी अपने हाथ में तीन गुणों के माध्यम से बांध देती है और दुनिया में फंसाए रखती है। और अंतरंगा शक्ति जो है वो राधा रानी है, उसको अल्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। उसमें भी तीन शक्तियां हैं, अल्लादिनी, संवित और संदिनी। उसमें अल्लादिनी शक्ति जो है विशेष रूप से राधा रानी का शक्ति है। जो भी आनंद आपके जीवन में है, जो भी भक्ति आपके जीवन में है, कर्णमय क्यों ना हो, चिंगारी के रूप में क्यों ना हो, वो सारी भक्ति का उगम श्रीमती राधा रानी है, वो सारी भक्ति का स्रोत है। और उसी के द्वारा ये दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, इन सब का निर्माण होता है। सबका उगम राधा रानी है। जितनी भी देवी आपको दिखाई पड़ती हैं, सब चंडिका देवी जितनी भी है, शारदा, सरस्वती, काली माता, ये सब राधा रानी से उत्पन्न होती है। राधा रानी अंतरंगा शक्ति है, लादिनी शक्ति है, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है, भगवान के परम भक्त है वो। सब रसों का उगम उनके चरणों से होता है। यहाँ की ब्रज में जो भी आनंद है, जो भी सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं, भगवान की लीला है, भक्ति का आनंद है, रस का आनंद है, अलग अलग लीलाओं का आनंद है, वो सब आनंद का उगम राधा रानी है। और भगवान की शक्ति होने पर भी भगवान उनके चरणों के रज प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम जो होता है ना, वो प्रेम ऐसी शक्ति है, सबसे पावरफुल शक्ति दुनिया में प्रेम की है। प्रेम के आधार पर हम सब कुछ जीत सकते हैं, सब गलतियां सुधार सकते हैं, सब दोष कम कर सकते हैं, सब त्रुटियां नष्ट हो सकती हैं। सबसे पावरफुल शक्ति जो है प्रेम की है। और भगवान राधा और कृष्ण जो है मूर्तिमंत प्रेम है। गौलोक धाम जो है भगवान का, वो भी उनका सार मूर्तिमंत प्रेम है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ कृष्णस अबोर्ड गौलोक वृंदावन? लव। और उसी प्रेम को प्रदान करने के लिए राधा और कृष्ण यहाँ पर अवतार लेते हैं और जन्म लेते हैं। जिस प्रेम को सब कुछ भूल कर हम लोग यहाँ पर आए हैं, उनको त्याग कर हम लोग यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं, इस शरीर को धारण किया है जो जन्म मृत्यु को प्राप्त है, जो मरने वाला है एक दिन, ऐसा शरीर प्राप्त करके यहाँ पर भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रेम जो है जो हमने खो चुके हैं, वो दोबारा प्राप्त करने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिलता है। अनंत योनियों में हम लोग दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म किस लिए दिया है? शरीर का और अच्छी तरह से भोग लेने के लिए नहीं दिया है वो। चलो इतना दिमाग प्राप्त हो गया तो बहुत बढ़िया से अभी हम लोग भोग लेंगे। हाँ, कुत्ते की बिल्ली के पास एसी नहीं होता है, हम लोग एसी लगाएंगे। हाँ, कुत्ते बिल्ली के पास गाड़ी नहीं होती, हम लोग गाड़ी में चलेंगे। कुत्ते बिल्ली हवा में उड़ नहीं सकते, हम हवाई जहाज में, आकाश में उड़ेंगे। वही भोग है सब, उसका एसेंस वही है, नश्वरता है ना। लेकिन मनुष्य जन्म दिया है कि उस दिमाग को यूज करके हम भगवान को प्राप्त कर सके, खोए हुए दौलत को प्राप्त करें। इसलिए भगवान साथ साथ जब अवतार लेते हैं तो अपना नाम भी प्रकट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तपस्या के बल से, ज्ञान के बल से, कर्मकांड के बल से, हाँ, योग के बल से हम लोग उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाम का जप कर से उनको तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। नाम का पुकारने से तुरंत उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, पुकारने के लिए आए हैं, नाम जप करने के लिए आए हैं। सबसे आसान और सबसे श्रेष्ठ तरीका ये भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। इसलिए बार बार पुकारते हैं, पुकारो 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 उनको, पुकारो उनको, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो, उनकी कृपा अपने आप खींच लो अपनी तरफ, क्योंकि वो कृपा हमें ज़रूरी है, जिस कृपा के माध्यम से हम उनको वापस प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ का दुख दर्द जो है, यहाँ की पीड़ा जो है, यहाँ की यात्रा जो है, उसको समाप्त कर सकते हैं। हाँ, हमारे में से बहुत लोग बुजुर्ग हैं, हाँ, किसी का पैर दर्द हो रहा है, किसी का पेट दर्द है, किसी का पीठ में तकलीफ है, कोई उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, खाना हजम नहीं हो रहा है, सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कितनी पीड़ाएं हैं दुनिया में, कितने रोग हैं, अनंत रोग है। हमारे मेडिकल किताब में हम पढ़ते हैं रोगों की कोई ख़त्म ही नहीं होता है गिनती, और एक एक आदमी को बहुत सारे एक साथ में मिल जाते हैं, है ना। जैसे उम्र बढ़ जाती है कितना कष्ट है, जवान थे तो कितने तंदुरुस्त थे, अभी 50, 60, 40 के आगे गए तो सब तकलीफ चालू होती है, उत्साह कम हो जाता है, डर लगने लगता है कि मैं करूँगी कि नहीं कर पाऊँगी, जाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, खा पाऊँगा कि नहीं, क्या होगा पता नहीं, गोली खाना चाहिए। हाँ, तो ये सब पीड़ा जो है, जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, ये सबके पीछे लगा हुआ है, चाहे आप सबसे धनवान व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, ये सबको समझना जरूरी है। इसलिए हम धाम में आते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, धन कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, बहुत सुंदर बनना है, विद्या संपन्न बनना है, नहीं, भगवान को वापस दोबारा जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और वो जानते लोग जो जानते हैं वही भाग्यवान लोग हैं, अपना जीवन का टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं फालतू चीज़ों में, क्या लाभ है उसका, सब चीज़ों में काम करके अंतिमतः सब कुछ आपने जो भी जमा के रखा है सब छोड़ के आपको बिना आपकी इच्छा के जाना पड़ेगा यहाँ पर, बाय फोर्स आपको भगाना पड़ेगा यहां से, जाओ यहां से, सबको नंगा करके आपको भेज देंगे। तो वो जिस चीज की प्राप्ति के लिए जीवन भर समय खर्च किया हमने, शक्ति खर्च किया, वो हमारे पास तो आने वाले है ही नहीं, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जो भी भक्ति आपने किया है, जो भी भजन किया है, भगवान का नाम का पुकारा हुआ है, जो भी भगवान की सेवा में कुछ काम किया है, भक्तों की सेवा किया है, धाम का दर्शन किया है, तो वो आपके संग जाएगा आत्मा के साथ में, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर किए हुए काम है, आपका आत्मा के स्तर पर बनाया हुआ बैलेंस है, वो आपकी पूंजी है, वो जो आत्मा की पूंजी है आत्मा के साथ जाएगी, शरीर की पूंजी है शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी, क्योंकि शरीर स्वयं नष्ट होने वाला है। इसलिए आपको विनती करते हैं, आप लोग बड़े भाग्यवान लोग हो, क्योंकि श्री जी के इस धाम तक कोई पहुंच नहीं पाता है, जो उनकी मर्जी होती है उनको ही वहां प्रवेश देती है वो, बाकी सब लोग कोई ना कोई बहाना हो जाएगा, पेट में दुखेगा, लूज मोशन हो जाएगा, कोई बड़ा बीमारी हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा उनका आना, ऐसे कई लोग कैंसिल भी हो चुके हैं। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका भी भाग्य उदय हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ का निवास जो है कण कण का निवास, क्षण क्षण का निवास, मिनट मिनट का निवास, दिन दिन का निवास जो है आपको जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर सकता है। ऐसे कहा गया कि आप रा जब पुकारोगे, राधा का रा बोलोगे, तो रा पुकारते ही आपके सारे पापों का बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन, दुख कष्टों का बंधन तुरंत खत्म हो जाता है। और धा जब कहेंगे तो कृष्ण भगवान मेरे प्रिय भक्त राधा रानी का नाम कौन पुकार रहे हैं ये देखकर आपके पीछे पीछे भागते भागते आएंगे। इस राधा शब्द का ये महिमा है, ऐसा उच्चारण करते ही धा कहने से तुरंत राधा कृष्ण भगवान आप पर भक्ति प्रदान कर देते हैं, आपको तुरंत ही उनके चरणों की भक्ति, क्योंकि राधा रानी उनको बहुत प्रिय है, उनके जीवन से भी अधिक प्रिय राधा रानी है। तो राधा रानी का नाम जब हम पुकारते हैं तो हम अनायास ही कृष्ण भगवान जो सबके मालिक है उनका ध्यान भी हमारी ओर आकर्षित कर रहे हैं। समझो आपका घर में एक बालक है, आप इसको मिंटू पुकारते शायद, आजकल तो मिंटू बंटू सब पुकारते रहते हैं लेकिन वो सही नहीं है एक्चुअली। लेकिन समझो आप ऐसे चल रहे हो और पीछे से कोई मिंटू पुकार रहा है तो आप मुड़ के देखेंगे कि नहीं तुरंत, अरे मेरे बालक का नाम कौन पुकार रहा है ना, उस समय किसका नाम सुनील है, आपके घर में बालक है तो पीछे कैसे सुनील सुनील करते पुकारते आ रहा है, तो आप तुरंत मुड़ के देखेंगे ना, अरे मेरे बालक का नाम पुकार रहे हैं, शायद मेरे बालक को मिलना है सब उसको। वैसे ही आप राधा को पुकारेंगे तो कृष्ण मुड़ के देखेंगे कि नहीं आपको, अरे मेरे राधा रानी को कौन पुकार रहा है, तुरंत उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। इसका प्रमाण भी है कि एक मोर था जो भगवान का भक्त था, वो भगवान को पुकारते पुकारते नंदगांव चला गया, बड़ी टेर लगाई उसने, टेर मतलब पुकार, यहाँ पर टेर कहते हैं उसको बड़ी भाषा में, बड़ी टेर लगाई भगवान को, हे नंदलाल, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, बहुत देर तक टेर लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको, तो फिर वो बरसाने में आया और यहां पर उसने तेल लगाई, हे गोपाल, हे गोविंद, हे राधे, हे गोविंद, हे गोपाल, तो राधा रानी भाग के आई कि कौन मेरे कन्हैया को पुकार रहे हैं, और बड़ा प्रेम से उसको दुलारा, बोले अभी तुम जाओ नंदगांव में और कृष्ण को नहीं पुकारो, मेरा नाम पुकारो। जाके फिर नंदगांव में जाके दोबारा, हे राधे, हे ब्रजेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृपामयी, तुरंत कृष्ण भगवान भाग के आए, कौन फिर राधा रानी को पुकार रहे हैं, तुरंत उस मोर को अपनी गोद में लेते हैं, प्रेम से एकदम दुलारते हैं उसको, तो मोर जो है भावनावश होकर एकदम बेहोश हो जाता है, भावना विभोर हो जाता है, तो भगवान उसकी भावना को देखकर उसका एक पंख निकालते हैं, अपने शीश में धारण करते हैं, तब से उन्होंने इस मोर पंख को धारण करना आरंभ कर दिया है। तो क्या रहस्य है, इनको पुकारना है तो उनका नाम लो, उनको पुकारना है तो इनका नाम लो, दिस इज द सीक्रेट, आपको बता रहे हैं हम, उसको अपनाओ आप, जब उनको पुकारेंगे तो वो नहीं देखेंगे, जब इनको पुकारेंगे तो वो देखेंगे। यही यहाँ की लीला है, प्रेम की लीला, तो प्रिया प्रियतम की लीला, यहाँ पर प्रेम का संबंध है, यहाँ पर सब कुछ आदान प्रदान बड़े उत्कटता से होता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर हम गए तो ये इसका एक छोटी सी कथा ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने सत्ययुग के आरंभ में 60,000 साल तप किया था भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको, सोच सकते हैं आप 60,000 साल तप किया, नो रिजल्ट, आपने दो घंटा कुछ भजन किया तो आप बोलेंगे क्या मिलेगा उसके बाद में। एक दिन उपवास किया एकादशी का, एंड में क्या मिला सोचते ही रहेंगे आप, हमेशा लाभ लाभ और हानि सोचते रहते हैं, हमारे अकाउंटेंट जानते हैं सब, प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्स्टेंट मेडिटेशन, क्या मिलेगा क्या खोया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता है, हम लोग कैंप में रखते हैं, कैंप में रखना है आपको हिसाब किताब। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग करते हैं भक्ति भजन करते हैं निरपेक्ष भावना से करते हैं, तो इसमें लॉस एंड प्रॉफिट का अकाउंट रखते नहीं हम लोग। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी निरपेक्ष भाव से 60,000 साल तपस्या किया, क्योंकि तो मांग ही रहे थे ऐसी वस्तु, इतनी कीमती वस्तु, तो बोला ठीक है पूरा नहीं होगा हमारा भजन चाहे तो। सत्ययुग के अंत में दोबारा 60,000 साल तपस्या किया, 120,000 साल तपस्या किया, और हमारा ऐसा नहीं सब साबुदाना खिचड़ी कुट्टू के आटे का लड्डू और घी का बनाया हुआ पकौड़ा आलू में घिला हुआ सब कुछ बढ़िया से माल खा के एकादशी का व्रत हो गया हमारा। हाँ बढ़िया, अरे हमने आज इतना बढ़िया एकादशी किया, सब जगह माल खाया अच्छी तरह से सुबह शाम, वो मंदिर में गए महाप्रसाद एकादशी का, ये मंदिर में गए तो सिंगदाने फ्राई किए थे, वो मंदिर में गए तो खजूर था। ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी का व्रत मतलब पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते वही खाना है। हाँ वो तपस्या करना है दिन भर, ध्रुव महाराज ने भी ऐसा ही व्रत किया था, बाद में तो पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। 12 दिन में एक बार एक बूंद पानी पीते थे वो, तो उसके बाद में 12 दिन में एक बार सांस लेते थे, इतनी कठोर तपस्या किया था। तो ब्रह्मा जी 120 साल तपस्या, 120,000 साल तपस्या करने के बाद में कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते ब्रह्मा जी आपकी क्या इच्छा है, तो कहते हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके लीलाओं का दर्शन जो है मुझे होता रहे। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, आप जाओ ब्रज में जाओ और वहाँ निवास करो। ब्रज में कहाँ जाए, ब्रज तो बहुत बड़ा है, कितने वन है उसके अंदर। नहीं आप ऋषभानुपुर में जाओ जहाँ मेरी प्रिय सखी राधा रानी विराजती हैं, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर्वत बनो, और वहाँ पर्वत बनेंगे तो आपके ऊपर मेरी राधा रानी और मेरी सखियाँ जो हैं वो सब आराम से विहार करती रहेंगी, और अनायास ही आपको दर्शन भी होगा और लीलाओं का चरणों की रज भी प्राप्त होगी और हम भी आएंगे लीला करेंगे आपके ऊपर। तो यहाँ ब्रह्मा जी पर्वत बने हुए हैं, आप जहाँ बैठे हैं ना एक ब्रह्मा जी के सर पर बैठे हैं आप, तुरंत दंडवत प्रणाम करो यहीं के यहीं ऐसे ही। क्या ना जानकारी दी थी हमको प्रभु जी ने बाद में बताया। हमको इस पहाड़ के नीचे ही चढ़ने के पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 शीश हैं, तो यहाँ 4 शीश शिखर वाले पर्वत हैं, एक पर्वत जो है 4 शिखर वाला है, इसका नाम ये भी है बृहत सानू या वर सानू, यानी जिस जगह पर पर्वत की चोटियां बहुत आकर्षक और सुंदर है उस जगह का नाम है बृहत सानू वरसान्यू, यानी कि बरसाना, जिसका अपभ्रंश हो गया है वरसाना। और भी इसका नाम है वर्षाणा, जो वृषभानु महाराज का राज्य है उसको भी वर्षाणा कहते हैं। वृषभानु महाराज के पास 12 लाख के ऊपर गायें थी, उसी को भानु नाम का पद प्राप्त होता है, भानु पदवी जो होती है ना 12 लाख के ऊपर गाय जो होती है उसको प्राप्त होती है, जो 9 लाख गाय होती है जिसके पास उसको नंद की पदवी प्राप्त होती है, इसलिए नंद सुनंद उपनंद ये नंद महाराज के भाई लोगों को नंद के ऊपर उपाधि प्राप्त है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी पर्वत बने हैं, और ये जो हिस्सा हम बैठे हैं ये भानुगढ़ है, भानुगढ़ मतलब वृषभानु महाराज का गढ़ है ये, यहाँ पर उनका महल था जो आज मंदिर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। राजा रानी और हाँ ये दानगढ़ है सॉरी, तो भानुगढ़ में राजा रानी का महल है जहाँ पर कीर्ति माता जो उनकी माता है कीर्ति मैया कीर्ति दाह वो उनसे विवाह हुआ था वृषभानु महाराज का। वृषभानु महाराज का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रीदामा, जो बड़े भाई थे कृष्ण राधा रानी के, और उसके बाद में कन्या प्राप्त हुई है राधा रानी, तो वहाँ विराजते हैं, उनका बचपन यहाँ गुजरा है। और ये जो हम बैठे हैं दूसरा शिखर है उसका, तो दानगढ़ कहते हैं उसको, उसको वहाँ पर आपको लेके जाएंगे, दान बिहारी का मंदिर भी है वहाँ कथा बताएंगे। तो ये दानगढ़ है, उसके आगे है विलासगढ़ जहाँ पर भगवान राधा के साथ में विलास करते हैं, यहाँ झूला भी है आनंद लेते हैं, और एक शिखर है, और एक लास्ट में एक बहुत पावरफुल शिखर है वहाँ पर आपको बैठ के कथा करेंगे, उसका नाम है मानगढ़। वहाँ पर भगवान का प्रेम बढ़ाने के लिए राधा रानी मान करती है, मतलब क्रोध करती है, किसी ईर्ष्या से नहीं या किसी सेल्फिश स्वार्थी उद्देश्य से नहीं, लेकिन जब पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा करते कभी कभी तो उससे उनका प्रेम बढ़ता है, प्रेम को बढ़ाने के लिए राधा रानी मान करती है, तो और उत्कटता से कृष्ण भगवान के पास में जाते हैं, तो मानगढ़ है। यहाँ पर 4 सरोवर भी है, यहाँ पर पीली पोखर है, यहाँ पर भानुखर है, यहाँ पर गहवर कुंड है, यहाँ पर धोनी कुंड है, बिहारी कुंड है, बहुत सुंदर सुंदर लीला है उसके अंदर। हाँ संक्षेप में आपको बताते हैं, मैं सब पहले आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आपका एकदम मूड बन जाएगा यहाँ पर इस जगह को अप्रिशिएट करने का। हाँ तो दानगढ़ की लीला ऐसी है कि दानगढ़ में भगवान दान मांगते हैं राजा रानी से, तो राजा रानी बहुत उनकी निर्भत्सना करती है कि शर्म नहीं आती है आप यहाँ के आके भिक्षा मांगते हो, हाँ नंद बाबा के पुत्र हो फिर भी आपको शर्म नहीं आती है, ऐसे बहुत निर्भत्सना करते हैं। और एक बार ऐसे भी लीला हुई थी यहाँ पर कि एक ब्राह्मण था वो रो रहा था बहुत, उसको तीन कन्याएं थी और वो बोल रहा था कृष्ण भगवान को मेरा कुछ करो सेवा करो, तीन कन्या को विवाह भी करना है, तो मैं तो फकीर हूँ कृष्ण भगवान बोलते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ मेरे पास केवल मेरा एक ही धन है, मेरे जीवन प्राण धन है, वो कहा क्या है, हाँ राधा रानी, बोले मेरा एक ही धन है बस, मेरे जीवन में और कोई धन नहीं है। तो राधा रानी को लेते हैं, बोलते ये लो, अरे तीन थी अभी चार हो गई ये तो तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया। बहुत रोता है ब्राह्मण, बहुत रोता है, भगवान हंस रहे हैं उनको देख के, बहुत रोता है, बाद में कहता है भगवान कुछ करो। तो फिर सखियों को भगवान आदेश देते हैं, ऐसा करो राधा रानी को झूले में बिठाओ, झूले में नहीं क्या बोलते तुला में बिठाओ, और सारे गहने जो आपके हैं वो डाल दो उस पलड़े में, राधा रानी का जितना वजन होगा उतना गहने जो है आपके बदन से उतार के आप ब्राह्मण को दान दीजिए। तो राधा रानी को बिठाते हैं झूले तुले में और सब लोग डाल रहे हैं अपना सब कुछ उतार रहे हैं, सब कुछ चौबी कान से गले से कमर से पैर से पायल सब उतार देते हैं, फिर भी वो इक्वल नहीं होता है। फिर जाके तुलसी पत्र रखते हैं उसके ऊपर, फिर तुरंत वो इक्वल हो जाता है ना। तुलसी पत्र का भी बहुत महत्व है, बहुत शक्ति है उसके अंदर। भगवान को अगर आपके पास कुछ भी नहीं है एक प्रेम से तुलसी का पत्ता अर्पण करो, भगवान सब प्रेम से स्वीकार करेंगे उसको। तो फिर सारा गहना उठा के ब्राह्मण को दान देते हैं। और भी वहाँ पर सुंदर लीला ऐसी है कि एक जगह है सांकरिक और जहाँ पर हम बैठ के शायद कथा नहीं कर पाएंगे, वो दो तो चार मुख है ना ये वहाँ के, चार ऐसे हैं फिर ऐसे भी है, तो दो ऐसे जब इकट्ठा होते ना तो बीच में एक छोटा सा गली बन जाए, पतली गली सांकरी कोर, ये दो पर्वत ऐसे हैं। तो उसमें यहाँ से राजा रानी सखियों को लेकर दधी बेचने के लिए आती है नंद बाबा से, नंद गांव से, यहाँ से कृष्ण भगवान सखाओं को लेकर यहाँ से आते हैं। अब यहाँ से आए तो रास्ता ब्लॉक कोई एंट्री नहीं सकते, अभी आप हटेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे, छोटी गाँव में आप जाएंगे। कल हम नंद कामेश्वर गए थे तो आगे सामने से ट्रैक्टर आ गया था, हम लोग पीछे हट गए, क्या करेंगे जगह नहीं है उधर। तो साखरी कोर का मतलब छोटी सी गली रहती है, वहाँ पर केवल एक साथ में एक ही दिशा में एक ही व्यक्ति जा सकता है। तो वहाँ से वो मटके लेके आते हैं, यहाँ से उनको रोक लेते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ पर आपको, ये हमारे सब जगह से आप गुजर रहे हो, वो बॉम्बे में लिखते हैं ना कि ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड, होता है ना, हमारे इलाके से आपको गुजरना नहीं, यहाँ पर जो भी गुजरेगा उस पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, हाँ ऐसा लिखते हैं सब जगह लिखा रहता है। That is called as dog mentality. If you come in my area, I'll bark on you. हाँ बॉर्डर में क्रॉस करेंगे तो भौं 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 करेंगे ना कुत्ते। तो वैसे ही वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, ये हमारा इलाका है सब, ये हमारा राज्य है, और हमारे राज्य से गुजरकर आप अपना दही बेचते हैं मथुरा में जाके तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बोला आप गलत बोल रहे हो, ये राजा रानी का राज्य है, आप हमारे राज्य में आए हो बिना पूछे, आप टैक्स दे दो हमको। इससे बहुत नोकझोंक होती है, उसमें ललिता देवी जो है वैसे चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा रानी, हाँ ललिता देवी को आगे करते, ललिता देवी बहुत कुशल है ऐसे वाद विवाद करने में, और एकदम एन मौके पे जो है ना वो जो सब टेंस सिचुएशन है तो शी इज इन फ्रंट, तो वो बहुत वाद विवाद करते हैं, नहीं आपका एरिया नहीं हमारा एरिया आपको देना ही पड़ेगा। तो वो रोक लेते हैं, अभी वो लड़के सब डंडा लगे खड़े हैं, अभी क्या करेंगे लड़कियां सब। तो फिर बाद में फिर कृष्ण भगवान मटका तोड़ देते हैं उनका, क्योंकि बोलते टैक्स दो, हमारे पास टैक्स नहीं है, दूध है दही है मक्खन है, तो एक मटका हमको देना पड़ेगा। तो बोले एक मटके से काम नहीं चलेगा, दो मटके चाहिए, तो दो फिर नहीं चलेगा सब चाहिए ऐसे कहते 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 सब तोड़ देते हैं मटके और सब खा लेते हैं। रोज का है ये, रोज का पीड़ा है रोज का। तो सखियाँ भी थोड़ी सी कुशल है ना, वो तो रोज रोज थोड़ी सहन करेंगे, अरे रोज जाएंगे रोज पकड़ेंगे तो नहीं उसका, रोज सहन करते रहेंगे कुछ ना कुछ उपाय तो करेंगे ना उसका। तो रोज उसका उनका वाद विवाद है, रोज कुछ संघर्ष है, आसानी से मक्खन नहीं मिलता है कृष्ण भगवान को और सखाओं को, रोज संघर्ष करना पड़ता है। तो कहते हैं अभी हम ऐसा मजा चखाएंगे कि अगले दिन, मतलब बोलते हैं कि तुरंत हाँ बोल देंगे उनको, जैसे ही आएंगे एकदम झट से दे देंगे उनको, तो एकदम आश्चर्य हो जाए ना वो दिल में, मेरे सरप्राइज, अरे आज क्या बात है अच्छा मुहूर्त निकला आज एकदम तुरंत ही हाँ कर दिया उन्होंने। तो उस दिन जाते हैं पहुँचते हैं और तुरंत ही बोलते हाँ तुरंत दे देंगे, अरे आप ही का है सब आप ले लो। लेकिन ऐसा है कि ये बहुत कीमती है दही और जो हमने बनाया है, बहुत मेहनत से बहुत स्पेशल गायों को स्पेशल घास खिला के बहुत प्रेम से रख के गर्म पानी से नहला के वो सब इतना बढ़िया से बनाया है उसका, फिर जमाया है उसको, गुलाब की खुशबू उसके अंदर है, कमल की खुशबू है, बहुत कीमती है ये। ये हाथ में लेंगे ना आप ऐसे, आप लोग तो गंवार है, नंदगांव के गंवार बालक हो, आपसे हाथ से आधा गिर जाएगा आधा खाएंगे तो कीमती दही जमीन पर गिरेगा ना, इतना कीमती दही। तो आप लोग दोना लेके आओ, दोना तो दोना लेके आपको दोना भी देंगे उसको। अभी आपको पता नहीं शायद, यहाँ पर जब मैं सबसे पहले आया था यहाँ पर कोई 25 साल पहले, तो कदम के पेड़ पर कदम के पत्तों का दोना बनता था अपने आप नेचुरली। मेरे पास एक दोने का फोटोग्राफ भी है, मैंने संभाल के रखा है उसको। मतलब पेड़ पर ही दोने आते हैं, आपको खाली निकालना है उसको, बोलो तुरंत उसमें खाना है, ऐसी भी व्यवस्था होती है। इसलिए उसको कहते हैं, एक कुंड है यहाँ पर, उसका नाम है धोनी कुंड। तो उस पर सारे दोने वाले कदम के वृक्ष थे, मैंने दर्शन भी किया उसका, नंदगांव में भी है। और दूसरा उसका मतलब ये है कि दोहनी मतलब वृषभानु महाराज अपनी गायों को वहाँ धोते थे, मतलब दूध निकालते थे, वो एक बड़ा कुंड है वहाँ पर। तो सब लोग वहाँ पर गए, झाड़ पे चढ़ गए, जैसे कि यहाँ पर सब चढ़ गए ऐसे, सब लोग ऐसे दोने निकाल, मेरे आज तो बड़ा अच्छा मुहूर्त है, इतना अच्छा दिन है आज, जितना चाहे मक्खन खा सकते हैं। इसलिए प्रेम से मग्न होकर दोने निकाल रहे हैं। तो उनकी चोटियाँ ना, जैसे हमारी चोटी है लंबी चोटी लटक रही है, सब गोपियाँ पीछे छुपके जाती है और सब चोटियों को पत्थर से बांध देती हैं, हाँ, और सब लोग ऐसे अटक जाते हैं पर्वत पे, ना देखने को ऐसे, ना देखने को ऐसे। कृष्ण भगवान, बलराम जी, मधुमंगल, सुदामा, सब उज्ज्वल, अर्जुन, सबको ऐसे पेड़ पे लटका के रखा है। तो सबकी चोटियाँ ऐसी बांध के एकदम असहाय अवस्था में पुकार रहे हैं। अभी जनरली जब संकट आता है तो सब लोग कृष्ण को पुकारते हैं, जैसे कि इंद्र ने वर्षा किया तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो पुकार रहे कृष्ण को, जब धेनुकर सुर का कुछ हुआ तो बलराम जी को पुकारा। तो उनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, जब संकट आता है तो कृष्ण बलराम को पुकारते हैं। तो ऐसे ही पुकारा, कृष्णा बलराम दाऊ जी महाराज किधर हो, हम लोग संकट में हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा काम हो रहा है, वो कृष्ण बलराम भी बोल रहे हैं, अरे सखा तुम कहाँ हो, मैं भी अटका हूँ, अरे मधुमंगल तुम किधर हो, मुझे बचाओ। हर जगह पर वृंदावन में सब जगह पर जैसे पुकारते हैं कृष्ण बलराम, जाके राक्षसों का वध करते हैं, करते ना तुरंत ही संकट का निवारण कर देते हैं। आग लग गई तो आग को पी लेते हैं, राक्षस आया तो उसको मार देते हैं, काली आया तो उसको दमन कर देते हैं, जम मार के सब जगह पर उनके तारण करता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण बलराम बोले, मधुमंगल सुदामा किधर हो तुम, क्योंकि मेरी भी चोटकी यहाँ पर लटकी हुई है। तो महाराज ने हमको इसका रहस्य बताया था कि इस जगह पर स्वयं कृष्ण भी असहाय है, सब जगह पर वो सबकी सहायता करने वाले हैं, सबका सहारा है, लेकिन यहाँ पर आके राधा रानी के प्रेम के प्रभाव के वश में आकर वो खुद असहाय बन जाते हैं। तो फिर वो क्या करे, इनको पुकार के कोई फायदा नहीं, इनको पुकार के भी फायदा नहीं, वो भी किसी को पुकार रहे हैं, तो सब लोग मिलकर राधा रानी को पुकारते हैं, कृष्ण भी राधा रानी को पुकारते हैं, सब सखा भी पुकारते हैं। बोले बड़े होशियार बनते हो रोज, हाँ हमको मजा चखाते हो, रोज आके रोकते हो, बाधा करो अभी, कभी ऐसा नहीं करोगे, हाँ जो भी आप कहेंगे छुड़ा दो बस यहाँ से, माखन भी मत दो, दोना भी मत दो, जाएंगे हम यहाँ से, लेकिन छुड़ा दो यहाँ से। नहीं, पहले वादा करना पड़ेगा आपको, रोज आपको हमको आके आप तंग करते हो, कल आप सब लोग सखी बनोगे, 16 श्रृंगार करोगे, लहंगा फैरिया चुनरी ओढ़ोगे, हाँ अच्छी तरह श्रृंगार करोगे, काजल लगाओगे, सब कुछ लगाकर सर पे अपने घर की बनाई हुई मटकी लेकर आओगे, खाली नहीं, दूध दही मक्खन भर के आओगे, और हम लोग सब सखा बनकर आएंगे डंडा लेकर, और हम आपको रोकेंगे और हम आपकी मटकी तोड़ेंगे। तो फिर अगले दिन क्या करेंगे, वादा किया तो पूरा करना है। तो फिर कृष्ण भगवान राधा रानी बन जाते हैं और बाकी सब लोग सखी या सखियाँ बन जाते हैं, अपने घर के जो माँ ने मक्खन बनाया उसको मटकी में धारण करके सर पे लेके आते हैं, और यहाँ राधा रानी कृष्ण बन जाती हैं, मुरली धारण करती हैं, मोर पंख धारण करती हैं, पीताम्बर पहनती है, वनमाला धारण करती हैं, और आते हैं डंडा लेकर, ठा हमारे एरिया में आते हो, टैक्स भरना पड़ेगा आपको, फिर नोक झोंक होती है, फिर राधा रानी अपने हाथ से मटका फोड़ देती है सबका, और सब लोग मक्खन खा लेते हैं। तो ये जो कहाँ रोकते हैं उनको, वो जगह पे साकरी कोर पे। तो साकरी कोर पे उस लीला में क्या हुआ है, राधा कृष्ण है और कृष्ण राधा है। तो आप दान बिहारी मंदिर में जाएंगे दर्शन करेंगे तो आपको राधा कृष्ण का दर्शन मिलेगा, लेकिन आपको देखना क्या है कि जो राधा है वो कृष्ण है, ये कृष्ण है वो राधा है, ये आपको देखना है उधर जाके, हम आपको ले जाएंगे वहाँ पर। उधर झूला भी है, वहाँ पर झूला झूलते ठाकुर जी, ऐसी प्रेम की लीला यहाँ पर होती है। इसका मतलब मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ उसको अच्छी तरह समझाने को आपको, लेकिन इतनी मिठास है उसके अंदर, जितना भी हमको पता है वो भी इतना मधुर है, उतना स्वीट है, इतनी प्रेम की लीला यहाँ पर है। फिर उसके आगे विलासगढ़ में विलास की लीला है, धोनी कुंड में ऋषभानु महाराज अपनी गायों को दूध निकालते हैं, बिहारी कुंड है, उसके अंदर एक लीला ऐसी है कि बिहारी कुंड को माहेश्वरी सर भी बोलते हैं। माहेश्वरी सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिहारी कुंड में श्री शंकर जी भगवान के लीलाओं से आकर्षित होकर, ये जानते हुए कि भगवान की भी शक्ति राधा रानी है और भगवान भी उनकी कृपा के लालायित रहते हैं, ये सोचकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी को पुकारने के लिए बरसाने में आते हैं। और वो जानते हैं कि भगवान की ये अंतरंग लीला में किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है, केवल गोपी प्रवेश कर सकती है। तो वो गोपी बनकर ही आते हैं और अपना श्रृंगार करना आरंभ कर देते हैं। तो पार्वती जी यहाँ पर आते हैं और अपने पति को देखकर हंस पड़ती है, अरे तुमको पता भी नहीं है कैसे गोपी बनना है, मैं बनाऊंगी आपको, मैं श्रृंगार करूंगी। तो पार्वती जी अपने हाथ से महेश जी का श्रृंगार करती हैं, बहुत अच्छा लहंगा पहनिया, दुपट्टा ओढ़ती है, फर्स्ट क्लास, क्या कहते हैं उसको, घूंघट, घूंघट अच्छी तरह से मार के फर्स्ट क्लास उसको सखी बनाते हैं उनको। कहते अभी देखो अभी सही है आपका सब, अभी आप जाने योग्य हो, जाओ अभी आप। तो फिर अपने पति को भेजती है और वो जाकर मानगढ़ के नीचे राजा रानी को पुकारते हैं, टेर लगाते हैं, इसलिए उस सर को बताया है माहेश्वरी सर। बहुत सुंदर लीला है वो। बीच में गहवर कुंड है जो गहवर वन में है। एक विशेष चीज है बरसाने के अंदर, वो है गहवर वन। गहवर मतलब मराठी में कहते हैं ना उसको, भावनांसा गहवर, मतलब ओवरवेलमिंग इमोशंस, भावना विभोर होना, उसको कहते हैं गहवर। तो वो गहवर वन जो है वो राधा रानी ने श्री कृष्ण के आनंद के लिए अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से वहां पर पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, बेली लगाए हैं, फूल लगाए हैं, फल लगाए हैं, हरियाली लगाई है, सब अच्छा व्यवस्था जो है राधा रानी का, वो खुद का अरेंजमेंट है, स्वयं अपने हाथ से बनाए। हम जाएंगे वहां पर, जब प्रसाद पाएंगे आज का, तो वो गहवर वन के आस वन में बैठ कर उस घर में पाएंगे, वो गहवर वन है। और वहां गहवर कुंड भी है, ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा आदि इंद्र आदि जो देवता हैं, गंधर्व आदि जो देवता हैं, वो सभी लोगों के लिए वो कल्याणकारी कुंड है, जिसका हम आचमन करेंगे। स्नान करने के लिए समय नहीं होगा तो आचमन भी स्नान के बराबर होता है, तीन बार सर पे जल छिड़केंगे, तीन बार जल को पिएंगे और प्रणाम करेंगे उसको, वो स्नान के बराबर होता है। तो हम लोग वहाँ आचमन करेंगे क्योंकि राधा और कृष्ण की उत्कट लीलाओं का वहाँ प्रकट्य है। तो इस तरह से मैंने आपको संक्षेप में बरसाना धाम का वर्णन किया। यहाँ की लीला कौन वर्णन कर सकता है? स्वयं कृष्ण भी कहते हैं कि बरसाने का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, खुद भी नहीं कर सकते। अनंत हेश अपने हजार मुख से निर्माण काल से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते आ रहे हैं, वो भी इसमें सक्षम नहीं है करने के लिए, इज नॉट केपेबल ऑफ ग्लोरिफाइंग इनफ द ऑल ग्लोरीज ऑफ श्री बरसाना धाम। तो ऐसे उत्कट धाम में हम आए हैं, यहाँ पर स्वयं इस धाम की जो महारानी है उसकी कृपा के लिए स्वयं भगवान भी यहाँ पर आते हैं। हम तो तुच्छ जीव हैं, हम कुछ नहीं है, लेकिन वो महारानी ऐसी है कि जिस पर उसकी नजर गिरती है वो कृपा करके अपना जीवन का बेड़ा पार कर देती है। ऐसी कृपा यहाँ पर है कि एक झाड़ू वाला यहाँ पर, इसको बुहारी कहते हैं, बुहारी मतलब झाड़ू लगाना, बुहारी ये बहुत अच्छा शब्द है, झाड़ू लगाना तो लौकिक शब्द है। तो एक बुहारी करने वाला व्यक्ति है, प्रभु जी जप मत करना, डोंट चैंट व्हेन कथा इज गोइंग ऑन। सो बुहारी कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, श्री जी की सीढ़ियाँ साफ कर रहा था। यहाँ पर एक बड़ी सेवा है, बड़े प्रेम से वहाँ पर महल की सीढ़ियाँ साफ करते हैं, ये भाव से करते हैं कभी भी इस सीढ़ियों से राधा रानी उतर सकती है, चढ़ सकती है, तो कोई कचरा कंकड़ लगना नहीं चाहिए। इसलिए भक्त लोग बड़े प्रेम से उसको झाड़ू लगाते हैं रोज, इसलिए आपको एकदम चकाचक दिखाई पड़ता है कि नहीं एकदम, क्योंकि भक्त लोग जो है प्रामाणिक भक्त कोई भी आके यहाँ पर साफ करते रहते हैं। तो वहाँ पर वो बुहारी लगा रहा था और कह रहा था राधे राधे कहिए, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन 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 गौरव कर रहा था। तो उसका भाव इतना उत्कट था, हृदय का आंखों में आंसू थे उसके, प्रेम से झाड़ू लगा रहा था। तो उसी के ऊपर एक ऐसी झाड़ था, उसका एक शाखा ऐसी थी, उस पर राधा और कृष्ण प्रकट हो गए उसके भाव की वजह से। और राधा रानी कृष्ण भगवान को कह रही है देखो कितना अच्छा भक्त है। राधा रानी की एक विशेषता है, वो सबसे श्रेष्ठतम भक्त है भगवान की, लेकिन हमेशा किसी ना किसी भक्त की सिफारिश करती रहती है भगवान को कि ये मुझसे भी अच्छा भक्त है, इसको आप कृपा करो, इस पर दया करो। तो कहते हैं देखो कितना आपका नाम पुकार रहा है, आपके धाम का गौरव कर रहा है, कुछ कृपा करो उस पर। तो क्या करो सके? तो कहते हैं कि आपने इतना बढ़िया अंगर का पहन के रखा है, दे दो उसको आपका प्रसाद के रूप में। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, नंद बाबा ने दिया मुझे, वो नंद बाबा ने पहनने को दिया है, सुबह पहना के भेजा है मुझे, शाम को पूछेंगे कहाँ गया अंगर का, तो क्या जवाब दूंगा मैं उनको, मैं नहीं दे सकता उसको, दे दो, तुम्हारा भक्त है इतना प्रेम से पुकार रहा है, कृपा करो उस पर। तो बहुत वाद विवाद होता है, फिर कृष्ण भगवान मानते नहीं है, बोले छोड़ो तुम, तुम्हारा अंगर का नहीं चाहिए, मैं मेरी शाल उसको देती हूँ। तो जो मैया ने ओढ़ी है शाल उनको, राधा रानी को श्रृंगार करके भेजा है, वो शाल निकालती है और ऐसे ऊपर से उस भंगे के ऊपर छोड़ देती है। जैसे ही उसके ऊपर वो गिरते हैं, वैसे कांपता है आनंद से, ऐसे आनंद विभोर होकर आंखों से अश्रु बहते हैं उसके, रोमांच होता है उसको। तो ऐसी कृपा यहाँ पर है। हाँ, आप लोग यहाँ बैठे हो, पता नहीं कब आप पर श्री जी कृपा करें। हाँ, इस भाव में रहिए, आप लालायित रहिए, उत्सुक रहिए, बी रेडी एंड ईगर टू एक्सेप्ट हर मर्सी। वो जो शॉल है ना, उसका राधा सुधा निधि ग्रंथ में वर्णन किया गया है। प्रबोधानंद सरस्वती नाम के एक बड़े संत हो गए हैं, जो ग्राम है प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, वो हमारे संप्रदाय के बड़े आचार्य हैं। वो इन्होंने किताब लिखा है राधा सुधा निधि, राधा जी का अमृत का निधि, ऐसा वर्णन किया है। उसका पहला ही श्लोक ऐसा है कि कृष्ण भगवान इतने भगवान, इतने राधा रानी की कृपा के लिए लालायित रहते हैं, इतने उनको चाहते हैं, इतने उनके अंकित रहते हैं प्रेम के, कि जो हवा बहती है, जो वायु आता है और वो उनके उत्तरीय वस्त्र को यानी शाल को छूकर लौटता है, सोच लीजिए, बराबर सोच लीजिए। हाँ, हवा आ रही है इस दिशा से, राधा रानी के शाल को स्पर्श करके फिर परावर्तित हो रही है, जो दिशा से परावर्तित हो रही है उस दिशा को कृष्ण भगवान प्रणाम करते हैं। समझ सकते हैं आप, हवा को नहीं, उस दिशा को, जिस दिशा से उनके शाल को छूकर हवा आती है उस दिशा को भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं। वही शॉल जो है, वो दिशा भी नहीं, हवा भी नहीं, वो शॉल उस भंगी के ऊपर पड़ी तो क्या अवस्था हो गई उसकी, सोच सकते हैं आप। ये सब कृपा का अनुभव हमको पता नहीं है क्या होते हैं, खाली सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी अद्भुत कृपा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ के कण कण में, रज रज में, यहाँ के जो वृक्ष हैं वो अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, कोई नीम है, कोई अर्जुन का है, कोई कदम्ब है, कोई तमाल है, कोई अलग अलग प्रकार के वृक्ष यहाँ पर है। इसमें बहुत रहस्य है इन वृक्षों में। ये वृक्ष कोई साधारण जीव नहीं है, धाम के वृक्ष जो होते हैं, कुछ वृक्ष जो होते हैं बड़े बड़े योगी जो है यहाँ पर तपस्या करते हैं वृक्ष के रूप में। राधा कुंड धाम में पांच पांडव श्याम कुंड के किनारे में जप कर रहे हैं वृक्ष के रूप में। अपने लीला समाप्त करने के बाद, महाभारत के बाद में, वो राधा कुंड में आकर पांडव जो हैं वृक्ष बनकर यहाँ पर भजन कर रहे हैं। जब उनको काटने का समय आया तो उन्होंने, वो महाराज जी के सपने में आए हो, हमें मत काटो, इस कुंड का जीर्णोद्धार करना है करो, लेकिन हमें मत काटो, हम पांच पांडव यहाँ पर वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं। इसलिए वो कुंड ऐसा टेढ़ा है क्योंकि वो वृक्षों को छोड़ के आगे भी उसको उद्धार किया गया। तो ये वृक्ष, कुछ वृक्ष हैं जो यहाँ पर बड़े संतगण यहाँ पर वृक्ष के रूप में भजन करते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जहाँ पर गोपियाँ स्वयं वृक्ष के रूप में दिन में विराजमान हैं, रात को ये वृक्ष जो है गोपी बनकर श्रृंगार करके रास में प्रवेश करते हैं। कुछ वृक्ष जो है वो भगवान के शांत रस के भक्त हैं, वो वृक्ष के रूप में भगवान को सेवा करना चाहते हैं, उनको छाया देते हैं, उनको अपने फूल देते हैं, अपने फल देते हैं, उनके अपने उनके तले भगवान लीला करते हैं। हर प्रकार से वृक्ष जो है वो भगवान का सेवक बन सकता है क्योंकि वो उसके अंदर सहनशीलता है, वो गर्मी भी सहनता है, सर्दी भी सहनता है, फिर भी अपने सेवा भगवान को सेवा करते हैं। गर्मी में क्या करते हैं, छाया देते हैं, खुद गर्मी सहन करते हैं, दूसरों को छाया देते हैं। सर्दी में क्या करते हैं, अपने शरीर का हिस्सा जो है शाखा वो दे देते हैं, उसको जलाते हैं और अग्नि उत्पन्न करते हैं लोग, लेकिन वृक्ष जो है वो गर्मी और सर्दी खुद सहन करते रहते हैं। इसलिए भक्तों ने कहा है कि भक्ति के जीवन में हमको तृणादपि सुने चेना तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के जैसे हमको सहनशील बनना चाहिए, मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर किसी से भी मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और दूसरों को मान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसी व्यक्ति को ही भगवान का निरंतर भजन का भाग्य प्राप्त हो सकता है, ऐसा वर्णन किया है। तो यहाँ के वृक्ष जो है, और एक इनका स्वरूप ऐसा है कि ये कल्प वृक्ष है, कल्प द्रुम है ये, मतलब क्या होता है कि भगवान के धाम में जितने भी वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष हैं। इसका अर्थ ही होता है कि इस वृक्ष के पास जाकर आप जो भी इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो आप कहेंगे मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे को अच्छी लड़की मिले, उसके अच्छे एग्जाम में मार्क आए, उसे नौकरी अच्छी मिले, उसको फॉरेन का वीज़ा मिल जाए, ये सब नहीं कहना उनके पास, उनका एजेंसी उनके पास नहीं है। भगवान के भजन में जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी आपको लगता है कि मेरी बाधा है, ये भगवान की सेवा में ये बाधा हो रही है, आप इनके पास प्रकट करो, ये आपके सब बाधाएँ दूर कर देंगे। हाँ, जो भजन में आपकी बाधा है, इसलिए हम लोग आके वृक्ष को गले मिलते हैं क्योंकि ये बड़े संत हैं जो इच्छा से वृक्ष बनते हैं, अपनी तरफ से भगवान को दिव्य रूप में सेवा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग जब भी जाएंगे, अभी उठेंगे यहाँ से, तो सब वृक्षों को बड़े प्रेम से गले मिलना, आशीर्वाद मांगना उनसे, क्योंकि वह स्वयं ब्रज की भक्ति आपको देने के योग्य हैं और सक्षम भी उसके लिए हैं। शक्ति रखते हैं अपने पास, आपको ब्रज में रति प्रेम आसक्ति रुचि उत्पन्न करने के लिए जो भी आवश्यक है वो प्रदान करने के लिए वो सक्षम है। इसलिए बिना संकोच आप गले लगाना उनको और मन की बात उनको बोल देना, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है। यहाँ की हर गाय जो है वो कामधेनु है, कामधेनु केवल दूध देते नहीं है, कामधेनु हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अनंत कामधेनु का वर्णन आता है, वशिष्ठ मुनि के पास थी, सब साधुओं के पास कामधेनु, मतलब सब काम करते हैं वो, हर चीज का सैन्य भी उत्पन्न करती है युद्ध के लिए। हाँ, तो सब गाय यहाँ की कामधेनु है। हाँ, यहाँ का चर चर जो कर्ण जो है वो चिंतामणि है। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि बरसाना धाम में ऐसे रहिए कि रंग से रंग जाइए पूरा, बस सूखे मत लौट के जाइए। हाँ, आत्मा को भक्ति का रंग लगा के ही जाइए। होली का मौसम चल रहा है अभी, विश्व में जो होली है वो इसका उगम यहाँ से हुआ है, जो होली नाम की वस्तु भी जो है उसका उगम यहाँ से हुआ है। बरसाने की होली सबसे श्रेष्ठ होली है और यहाँ पर 40 दिन की होली चलती है, बसंत पंचमी को आरंभ होती है और फाल्गुन पूर्णिमा तक चलती है 40 डेज। अभी 20 तारीख को थी ना बसंत पंचमी, वहाँ से आरंभ हुई, यहाँ से शाम को रंग उड़ता है भगवान के ऊपर। अब शाम को दर्शन करने आएंगे सबके ऊपर रंग लगाते थे वो, और ऐसे नहीं ऑयल पेंट और ये वो सब, बॉम्बे का पर विकृत होली है वो। वो ऐसा रंग बनाते हैं केमिकल जो आपका चमड़ी भी नष्ट हो जाए और रंग भी ना निकले। लेकिन यहाँ की होली में जो नेचुरल कलर्स हैं, अभी यहाँ पर भी विकृत होती जा रही है, लेकिन जो मूल भाव होली का है वो प्रेम व्यक्त करने के लिए कलर्स का यूज करते हैं, रंग का यूज करके आपका प्रेम व्यक्त करते हैं। बड़े बूढ़ों को चरणों में होली रंग लगाते हैं, समवयस्क को गाल में लगा के गले मिलते हैं। प्रेम का प्रकट करने के लिए होली का उत्सव है, सबसे ऊंचा प्रेम का प्रकट जो होता है वो रंगों के माध्यम से करते हैं होली के रूप में। इसलिए ठाकुर जी को पहले रंग अर्पण करते हैं, प्रसादी रंग जो है तो सब लोग शीश पे लगाते हैं, और तरीका ऐसा है उसका कि रंग लेके गाल पे सर पे लगाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं। भक्त अपने एक दूसरे के साथ जो प्रेम होता है उसका भी आदान प्रदान रंग के रूप में करते हैं, कभी होली खेलते हैं कभी झूला झूलते हैं, ये सब जो है प्रेम प्रकट करने का एक माध्यम है। तो ये सब जो विकास है, रसों का विकास, शास्त्रों का विकास, ये सब बरसाने से होता है। जो भी रस बरसा वृंदावन धाम में है प्रेम का, अलग अलग रसों में इसका विकास होता है, इस रस का उगम यहाँ पर है और वो भी उगम राधा रानी के चरणों से होता है। जितने भी वेद हैं, जितने भी ऋचाएं हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब शास्त्र जब राधा रानी चलती हैं तो उनके घुंघरू से ध्वनि से माध्यम से सब शास्त्र उत्पन्न होते हैं। तो हमारे जीवन का जो सार है, जो हमारा आधार है, उसको राधा रानी की ओर से प्रस्तुत है हमारे लिए। इसलिए हम यहाँ पर आके कृपा की याचना करनी चाहिए कि हम पर कृपा कीजिए, हमारा जीवन धन्य कीजिए। ये मंदिर जो है इसकी कथा ऐसी है कि एक जयपुर के राजा थे, वो बड़े भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने इस पहाड़ पर एक और मंदिर बनाया। देखो आप कितना सुंदर मंदिर है, थोड़ा गौर से उसको देखिए, इसका नक्शी काम देखिए, अभी कितने साल हो गए उसको, एक एक खिड़की देखिए उसकी, एक एक नक्शी काम देखिए, तुलसी का वृंदावन देखिए, जहाँ जहाँ खंभे देखिए, ऊपर का महल देखिए, खिड़की देखिए, एकदम बारीकी से इतना सुंदर काम किया गया है। वो भी अभी थोड़ा थोड़ा सा खराब हो गया है, अभी पहले जब था जब बनाया गया था तो सोच सकते कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, कैसे बनाया होगा पहाड़ पर उसको। उसकी इच्छा थी कि यहाँ पर राधा रानी आके विराजे। तो मंदिर पूरा किया उसने पूरा, लेकिन जब वहाँ से राधा रानी को उठाकर यहाँ स्थापन करने का समय आया तो राधा रानी स्वप्न में आई उनके। उन्होंने कहा कि वो मेरा घर है, मेरा पिताजी का महल है, वो मेरा निजी स्थान है, वो आप मुझे वहाँ से यहाँ स्थापित नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहूँगी यहाँ पर आना। तो इतना बड़ा मंदिर बनने के पश्चात राधा रानी ने खुद बना कर दिया, तो राधा रानी वहीं विराज रही और यहाँ पर अलग विग्रह बनाकर उनको स्थापित किया गया। का नाम है राधा कुशल बिहारी जी, ये मंदिर का नाम जो है, राधा रानी यहाँ पर विराजती हैं। दानगढ़ पे जयपुर के राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाया है, बहुत सुंदर बने। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भाव से मंदिर बनाया है, हाँ, कितना प्रेम से बनाया होगा राधा रानी को सेवा करने के लिए। तो ये मंदिर है, यहाँ के पुजारी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, जब भी हम आते हैं तुरंत हमको महाप्रसाद भेज देते हैं। उनके पिताजी का 1992 के सबसे पहले कैंप में ऑपरेशन हुआ था हमारे कैंप में। इस तरह से आप सब लोग भाग्यवान हो, आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आप इसे पवित्र स्थान पर आए हुए हैं। हाँ, अभी सब लोग आप दंडवत प्रणाम कीजिए, रज को अपने माथे पे लगाइए, इन पेड़ों को मिलिए। हाँ, अपना निजी जो अभी आपका काम है वो कीजिए आप। हाँ, प्राइवेट लीला कीजिए अभी आप, जो भी आपको करना है, और इस धाम का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय।
जय जय श्री राधे।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपका करके पूजा प्रणाम करके हम लोग निकलेंगे आगे, दान बिहारी मंदिर में जाएंगे, वहां कथा नहीं होगी, आप दर्शन कीजिए, भूलना नहीं। कृष्ण राधा, राधा कृष्ण।